कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का, जो इसराइलियों द्वारा सिने पर्वत से आरंभ की यात्रा को कनान की सीमा मुआब के मैदान तक की यात्रा से जोड़ती है। आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, इन दिनों हम गिनती की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि किस प्रकार इसराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वे नाश किए गए, और वे लोग जो परमेश्वर के उस देश में पहुंचना चाहते थे नहीं पहुंच सके, और वे जो आयु में कम थे वे ही उसमें प्रवेश करने पाए। आइए आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और अध्याय 15 से अपने अध्ययन को जारी करेंगे। इसका विषय है इसराइलियों की पराजय से ईश्वर की आशीषों में देरी। मित्रों, ईश्वर के उद्देश्यों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। हमने देखा कि इसराइली लोग कादेश बर्निया में एक निर्णय तक पहुंचे। जैसा आप सब जानते हैं कि जीवन के फैसले लेने में हम सब कठिनाई महसूस करते हैं। एक मसीही के बारे में यह एक विशेष सत्य है। अधिकतर समयों में हम चौराहे पर खड़े हुए निर्णय अर्थात निश्चय नहीं कर पाते कि किस मार्ग से जाना है, परंतु इनके लिए यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वहां से जाना है और कहां से आगे बढ़ना है। इनकी समस्या चुनाव की थी कि विश्वास के द्वारा कनान देश में प्रवेश करें अथवा अविश्वास से मुड़कर जंगल की ओर चले जाएं। अविश्वास में मुड़कर उन्होंने गलत निर्णय लिया और उनका निर्णय बहुत ही गलत साबित भी हुआ। तो भी जब जंगल की ओर निहारा, उनका मन बदला और निर्णय लिया कि प्रतिज्ञा देश, उसके दीवार सहित नगर एवं दानव लोग इतने बुरे नहीं जितना बुरा जंगल दिख पड़ता है, अतः देश में जाने का पुनः प्रयास किया। यह विश्वास का फैसला नहीं था, यह निर्णय उनके 2 वर्ष के जंगल का अनुभव पर आधारित था। उन्होंने देश में घुसने का साहस किया, परंतु अविश्वास के समान अहंकार अर्थात घमंड भी, जो एक खतरनाक बात है। मेरे पहचान के एक व्यापारी भारी उत्तरदायित्व का कार्यभार संभाले थे, परंतु जब उन्होंने एक नया घर लिया और साज सज्जा का सामान खरीदा तो उन्हें पद रिक्त होना पड़ा। उसने वर्नन मैगी से प्रश्न पूछा, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया, जबकि उसी ने घर सामान खरीदने को मेरी अगुवाई की थी। मैंने उससे कहा, जब आप नया घर खरीदना चाहते थे, आपने मुझसे कहा था कि उस समय आप परमेश्वर की अगुवाई के बारे में निश्चिंत नहीं थे। शायद आपको वह क्षेत्र भी नहीं पसंद था, पर तो भी आपने उसे खरीदा। अब आप ईश्वर को दोष दे रहे हैं। मित्रों, हो सकता है कि उस समय विश्वास की अपेक्षा आप अनुमान पर चल रहे थे। उसने उत्तर दिया, अच्छा, मैंने सोचा था कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा। मेरे मित्र, हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि हम विश्वास अथवा अनुमान पर चल रहे हैं। दो के बीच परमेश्वर की इच्छा हो सकती है। उसकी इच्छा जानने के लिए प्रभु के चरणों पर ठहरना बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम गिनती नामक पुस्तक के उस भाग से गुजर रहे हैं, अध्याय 15 से 25, जिसे मैंने जंगल में भूल, उल्लंघन, बलवा, विद्रोह, दंड का नाम दिया है। कादेश बर्निया से परमेश्वर ने उन्हें पुनः जंगल की ओर लौटा दिया। चलना अब घूमना बन गया, पैदल चलना बदल गया। कुड़कुड़ाने में, साक्षी चिल्लाने में, युद्ध लड़खड़ाने में, गाना रोने में, काम करना केवल इच्छा में, सब बिल्कुल बदल गया। अभाग्यवश भारी संख्या में अधिकतर मसीहियों का जीवन इसी प्रकार से बीत रहा है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि वर्ष चुपचाप शांति से व्यतीत हुए। इनका अन्यंत्र कहीं भी विवरण नहीं मिलता है। केवल कुछ असंबंधित घटनाएं इतिहास में उपलब्ध हैं। तो भी उन वर्षों की कुछ आम विशेषताएं निम्न है, जैसा अध्याय 33 में नीरस चर्चा यात्रा के पड़ाव स्थल के विषय में की गई है। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध किया जा सकता है, परंतु उन वर्षों को विस्तार पूर्वक विवरण हमारे पास में नहीं है। इसराइलियों के लिए ये वर्ष व्यर्थ वर्ष हैं। मित्रों, हम यहोशू की पुस्तक के 5वें अध्याय में पढ़ते हैं कि इस अवधि में उन्होंने अपने बच्चों के खतना भी नहीं करवाए। इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने परमेश्वर के इब्राहिम से जो वाचा बांधी थी उस इच्छा को भी पूरा नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर को भेंट बलिदान भी नहीं चढ़ाए। आमोस की पुस्तक 5 अध्याय उसके 25 में लिखा हुआ है, ओ इसराइल के वंशजों, क्या तुम्हारे पूर्वजों ने 40 वर्ष तक निर्जन प्रदेश में पशु बलि और अन्न बलि चढ़ाई थी? कदापि नहीं। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं आमोस 5:26 में, नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। यहाँ पर हम और आगे देखते हैं, स्तेफनुस ने भी प्रेरितों के काम में इसकी चर्चा की है, परंतु परमेश्वर ने उनसे मुंह मोड़ लिया तथा उन्हें आकाश गणों को पूजने के लिए छोड़ दिया, जैसा कि नबियों की पुस्तक में लिखा है, हे इसराइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझ ही को चढ़ाते रहे? तुम अपने साथ मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को भी लिए थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने पूजने के लिए बनवाया था, अतः मैं भी तुमको बाबुल से पेड़ ले जाकर बसाऊंगा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 42 से 44 पद में हम इसे पढ़ते हैं। इस प्रकार इन दिनों के दौरान इस्राएली लोग परमेश्वर के प्रति वफादार अर्थात विश्वस्त नहीं रहे। घुमंकड़ यात्रा के ये अनेकों वर्ष आज हमारे लिए बहुत से सबक अर्थात सीख प्रस्तुत करते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में वर्तमान संसार एक जंगल के समान है। हमें चाहे इसका आभास न हो, आप और मैं, हम सब विश्वासी जो इस संसार में से गुजर रहे हैं, ऊपरी ओर से परदेशी हैं। मैं पुनः दोहराता हूं कि इस अध्याय का शीर्षक है परमेश्वर के आशीषों में देर हो सकती है, परंतु उसके उद्देश्य को विफल नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, इस्राएली लोग मुड़कर जंगल में चले गए, पर परमेश्वर कहता है कि वे देश में प्रवेश करेंगे और जहां तक परमेश्वर की चिंता है वह सब ठीक है। यही कारण है कि अधिकतर भविष्यवाणी जो पुराने नियम में मिलती है उन्हें नबूवत काल के नाम से जाना जाता है। लिखा है भूतकाल में, परंतु उसका अर्थ निकलता है भविष्यत काल में और भविष्य घटना में। मित्रों, जहां तक परमेश्वर की बात है, जब वह कुछ बात को गुजरने देता है या करने देता है तो वह उनके प्रोग्राम के अनुसार घटित हो चुकती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परमेश्वर का अभिप्राय नष्ट नहीं होता। गिनती की पुस्तक 15 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम अपने निवास के देश में पहुंचो जो मैं तुम्हें देता हूं। यहां पर फिर देखते हैं परमेश्वर अब उन्हें बताते हैं कि देश में प्रवेश करने पर उन्हें कौन से कार्य करने हैं। 40 वर्ष बाद इसराइल की एक नई पीढ़ी प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करती है। उन्होंने वे कार्य किए जो उनके पूर्वज करने से चूक गए थे। हम गिनती 15 उसके 3 और 4 पद में पढ़ते हैं, और यहोवा के लिए क्या होम बलि, क्या मेल बलि, कोई हव्य चढ़ाओ, चाहे वह विशेष मन्नत पूरी करने का हो, चाहे स्वेच्छा बलि का हो, चाहे तुम्हारे नियत समयों में का हो, या वह चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरियों में का हो, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, तब उस होम बलि व मेल बलि के संग भेड़ के बच्चे पीछे यहोवा के लिए चौथाई हीन तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा अनबलि करके चढ़ाना। मित्रों, अब परमेश्वर उनसे भेंट के बारे में चर्चा करता है। हीन तेल पवित्र आत्मा का परिचायक है। तब हीन दाख मधु का चौथाई भाग पीने की भेंट आनंद का घोतक है। ध्यान दे, परमेश्वर कैसा कहते हैं गिनती की पुस्तक 15 अध्याय उसके 8 पद में, और जब तुम होम बलि या किसी विशेष मन्नत को पूरा करने के लिए बलि या मेल बलि करके बछड़े को यहोवा के लिए चढ़ाओ। मित्रों, परमेश्वर उनसे कहते हैं कि कनान देश में भी तुम ठीक उसी प्रकार करोगे जैसा किया गया था। यद्यपि जंगल पीढ़ी मूर्ति पूजा की ओर मुड़ी, पर नई पीढ़ी जो देश में प्रवेश करने पाए उन सभी भेंट बलिदानों को चढ़ाएगी जो प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के विषय में बोलते हैं। मेरे मित्र, आज आपका क्या हाल है? संभवतः रविवार के दिन आप चर्च जाते हैं, अपने मनों को पवित्र धर्मशास्त्र और प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित करते हैं, परंतु सोमवार को क्या होता है जब आप संसार के साधन में फिर से भ्रमण करते हैं? क्या आप संसार के साथ मूर्ति पूजा में सम्मिलित होते हैं? क्या आप इस संसार के परमेश्वर की सेवा करते हैं? क्या रविवार को शुद्ध धार्मिक जीवन व्यतीत करते पर सप्ताह के अन्य दिनों में धर्म निरपेक्षता का पालन करते हैं? मैं आपको बताता हूं कि प्रभु यीशु आपके साथ बाजार जाना चाहते हैं। संसार की सड़कों पर भ्रमण करना आपके जीवन के प्रत्येक कार्यक्रम में सहयोगी बनना चाहते हैं। वह वहां भी इतने वास्तविक हैं जितना चर्च में उनकी उपस्थिति को आप महसूस करते हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक के पिछले वर्णन में जो भूल से पापों की चर्चा थी उसका निम्न विवरण यहां प्रस्तुत है। गिनती की पुस्तक 15 अध्याय उसके 24 से 26 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उसमें यदि भूल से किया हुआ पाप मंडली के बिना जाने हुआ हो तो सारी मंडली यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला होम बलि करके एक बछड़ा और उसके संग नियम के अनुसार उसका अन्न बलि और अर्घ चढ़ाए और पाप बलि करके एक बकरा चढ़ाए। तब याजक इसराइलों की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करे और उनकी क्षमा की जाएगी, क्योंकि उनका पाप भूल से हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए अपना चढ़ावा अर्थात यहोवा के लिए हव्य और अपना पाप बलि उसके सामने चढ़ाया। सो इसराइलों की सारी मंडली का और उसके बीच रहने वाले परदेशी का भी वह पाप क्षमा किया जाएगा, क्योंकि वह सब लोगों ने अनजाने में ऐसा किया है। हम यहाँ पर देखते हैं भूल के पापों से हमें वर्तमान के एक मुद्दे का स्मरण हो जाता है। अन्य धर्मी लोग जिन्होंने सुसमाचार कभी भी नहीं सुना उनके विषय अक्सर बातचीत अर्थात चर्चा होती रहती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वे इसलिए बचे नहीं कि उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना, परंतु इसलिए खोए हैं क्योंकि वे सब पापी हैं। भूल के पापों के लिए भी भेंट बलि चढ़ाना है। मित्रों, मनुष्य इसलिए नष्ट है क्योंकि वे पापी हैं, चाहे उन्होंने सुसमाचार सुना अथवा नहीं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को सुसमाचार सुनने और निर्णय लेने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए, परंतु मानव तो पहले से ही विनाश में है, चाहे उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया अथवा नहीं। परंतु प्रभु यीशु पृथ्वी पर ऐसों को ही खोजने और बचाने के लिए आया, यह उनकी स्वाभाविक दशा है। पतित मानव जाति वर्तमान में इसलिए खेदित और दुखी नहीं है कि उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना। यदि आपको कभी भी ऐसा अवसर मिले कि उन तक सुसमाचार ले जाएं, तो पता चलेगा कि वे सुनने के प्रति बिल्कुल उत्सुक नहीं है। मित्रों, अब हम आगे देखेंगे शब्द के उल्लंघन के कारण पथराव। यहाँ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसको पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। निर्जन प्रदेश की यात्रा के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हम गिनती की पुस्तक 15 अध्याय उसके 32 से 36 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, जब इसराइली जंगल में रहते थे उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पत्थरवाह करें। सो जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर पत्थरवाह किया और वह मर गया। यह बहुत गंभीर और कठोर घटना है। इससे एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि 10 आज्ञाओं को तोड़ने का दंड मृत्यु दंड है। हमें इसको समझने की नितांत आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से उसने हमारी मृत्यु का दंड उठा लिया है। अब हम आगे देखते हैं स्मरणदायक फुंदना अर्थात नीला। गिनती की पुस्तक 15 अध्याय उसके 37 से 41 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के कोर पर झालर लगाया करना, और एक एक कोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर वे विचार न करते फिरो जैसे करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मित्रों, नीले रंग के किनारे जो आकाश का रंग है उनको याद दिलाता है कि वे परमेश्वर के लोग थे और इस पृथ्वी पर उन्हें स्वर्गिक चाल चलना था। आधुनिक विश्वासियों के पास भी नीले रंग की झालर होना चाहिए कि याद रखें कि वे परमेश्वर की संतान और प्रभु यीशु के द्वारा अलग किए गए लोग हैं। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 15 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 16 से आरंभ करेंगे और इसका विषय है कोरह का बलवा। यद्यपि हमारे पास इसराइली वंशज का जंगल के भ्रमण काल का कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं है, परंतु यहाँ वहां की कुछ घटनाएं अवश्य उपलब्ध हैं। अध्याय 16 से 19 तक 4 घटनाएं ऐसी हैं जिनका संबंध पुरोहितों से है। अध्याय 16 में कोरह का बलवा और अध्याय 17 में हारून की लाठी पर कलियां, अध्याय 18 में याजकों और लेवियों की सेवा कार्य की पुष्टि और अध्याय 19 में लाल बछिया की बलि संबंधी चर्चा की गई है। मित्रों, ईश्वरीय प्रदत्त अधिकार के विरोध विद्रोह। इस अध्याय का प्रारंभ इसराइली प्रज्ञा के कुड़कुड़ाने से होता है। यह पांचवी बार है और इसके पूर्व कि हम इस अध्याय को समाप्त करें, छठवीं बार भी बड़बड़ाना पुनः आरंभ हो जाता है। इसराइलियों के जंगल भ्रमण काल को इन कुड़कुड़ाने के आधार पर भी विभक्त किया जा सकता है। यह विवाद याजकीय पद पर खड़ा हुआ और वास्तव में इसका आरंभ एक प्रधान लेवीय कोरह के द्वारा किया गया। आइए हम गिनती की पुस्तक 16 अध्याय उसके 1-3 पद को पढ़ें। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इसहार का पुत्र था, वह एलीआब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरोध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारे मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। यहाँ पर हम देखते हैं कोरह एक लेवी था और अधिकार प्राप्त अगुआ भी। उसके साथ इसराइली प्रजा के 250 अगुए और प्रसिद्ध लोग भी थे। विद्रोह को सफल बनाने के लिए प्रभावशाली और प्रसिद्ध लोगों की मदद जरूरी थी। इसमें बुद्धि और धन दोनों ही खपत होती है। यह कोई साधारण बलवान नहीं था। मेरे मित्रों, शायद आप सोचते हों कि वर्तमान में विरोधी पक्ष विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजन आज ही देने पर है, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ भी एक संगठन के विरोध प्रदर्शन जारी है। यहाँ भी योग्य व्यक्ति हैं जो सदा की भांति जनता से दोष लगाकर सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे आपके अधिकारों का हनन हुआ है, आपके अगुए अत्यधिक अधिकार प्राप्त करके निरंकुश बन गए हैं। जिन अधिकारों को तुम्हारे पास होना चाहिए था, अब उन्होंने हड़प लिया है। मित्रों, वास्तव में जो दोषारोपण करके विद्रोह जारी था, उसके तथ्य पूर्णतः सच नहीं थे। मूसा सभी अधिकारियों को स्वयं में नहीं समेटे था। यदि इतिहास का अवलोकन करें, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो उसने मना कर दिया, यह कहकर कि वह लोगों की अगुवाई करने में समर्थ नहीं है। उसने एक सहायक की मांग की और ईश्वर ने उसे मूसा को दिया। मूसा धरती पर एक सबसे नम्र पुरुष था। जब यहोशु नबियों को चुप करना चाहता था, मूसा ने कहा, काश परमेश्वर के सभी लोग नबुवत कर पाते। उसके शरीर में एक भी हड्डी जलन की नहीं थी। मेरे मित्र, हमने देखा कि मूसा निर्दोष भी नहीं था, परंतु यह कहना कि सब अधिकार उसने समेट लिया है गलत था। यहां वास्तव में समस्या की जड़ क्या थी? यह कोरह के मन की जलन थी। जलन का मामला बड़ा भयंकर होता है। सभी अधिकार ईश्वर प्रदत्त हैं। इस अधिकार का आदर सत्कार कोई स्वयं नहीं लेता। शिविर में स्थान भी ईश्वर ने ही बांटे थे और उसी ने लेवी वंशज को विशेष कार्य भी सौंपा था। कोरह एक कहाती भी था। उनका पद और सेवा कार्य भी ईश्वर द्वारा नियुक्त थे। मूसा का अपना पद एवं उससे जुड़े कर्तव्य थे। वास्तव में इस प्रकार के विद्रोह अर्थात बलवा का सामना खुलकर कठोरता से किया जाना चाहिए था, तथा उचित दंड भी इसको मिलना चाहिए था। आज हमें यह देखना कितना महत्वपूर्ण लगता है। कलीसियाओं में हर जगह समस्याएं ही समस्याएं हैं। आज हम समस्या सहित लोग हैं, क्योंकि वास्तव में इनसे घिरे हुए लोग हम हैं। मेरा अनुभव है कि वर्तमान में कई कलीसियाएं अधिकतर समस्याएं व लोगों के विद्रोह से भरे हैं। केवल एक बात है जो सब में पाई जाती है, जो है विद्रोह की भावना, जलन। इसलिए बार बार बाइबल में मन में दीन और नम्रता से चलने की चुनौती हमें दी गई है। हमें नम्रता से चलना सीखना तथा स्वीकार करना है कि सभी अधिकार परमेश्वर की ओर से हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 12 अध्याय में पौलुस कलीसिया को एक देह कहता है, एक मानव शरीर। जैसे देह के बहुत से अंग हैं, वैसे ही कलीसिया के सदस्य हैं। जब परमेश्वर आपको बचाता है तो वह तुम्हें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा देह का अंग बनाता है। विश्वासियों की देह में आपको एक निश्चित ढंग से कार्य करना है। आत्मा के वरदान अनेक हैं। मित्रों, यदि आप मसीही हैं, आपको वरदान का दान मिला है और विश्वासियों की देह से मिलकर चलना है, तो संपूर्ण देह जीव नहीं है। इसलिए प्रत्येक जन अन्य भाषा में बात नहीं करेगा। सभी देह आंख नहीं और न ही कान है। प्रत्येक व्यक्ति के पास दान है और बहुत से वरदान है। एक वरदान सेवा कार्य अर्थात सहायता व मदद का भी है, और मेरे विचार से ऐसे सैकड़ों मार्ग और जरिए हैं जिनके द्वारा आप परमेश्वर के वचन की सेवा कर सकते हैं। प्रत्येक विश्वासी का दान है और उस दान का इस्तेमाल करके हम ईश्वर की सेवा करते हैं। आपका काम किसी दूसरे पद या नौकरी लेने का नहीं है। हम मसीहियों के मध्य कई ऐसे मूर्खतापूर्ण गलत विचार फैले हैं कि हम सदैव किसी संगठन के सभापति अथवा जनता के बीच चमकने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे मित्र, देह के अनेक अंग तो दिखाई भी नहीं देते, वे शरीर के अंदर हैं और हम उन्हें ढक लेते हैं, तो भी उनके कार्य शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। कलीसिया में भी कुछ ऐसा ही है। हमारी कलीसियाओं में अधिकतर दंगाइयों की प्रेरक जलन ईर्ष्या होती है। ऐसे लोग अपने को प्रधान पदों पर ढकेल कर अगुआ बनना चाहते हैं, उन वरदानों को हड़पना चाहते हैं जिसके लिए वे उपयुक्त नहीं हैं। जिस पद का प्रयास करने में जुटे हैं उसके लिए उनमें विशेष योग्यता भी नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें कदापि ऐसे पद के लिए कभी नहीं चुना है। मित्रों, कलीसिया को वर्तमान में नुकसान ऐसे ही लोगों के द्वारा पहुंच रहा है। परमेश्वर इस विद्रोह की समस्या का निपटारा अलग तरीके से करेंगे। मैं पुनः स्मरण दिलाता हूं कि इन लोगों पर ईश्वर का न्याय अर्थात दंड गंभीर एवं भयानक होगा। देखिए फिर परमेश्वर ने क्या किया। मेरे मित्रों, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। हम इसे अगले भाग में देखेंगे कि उन्हें दंड किस रीति से मिला। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा आपको अवश्य ही आशीष मिला है, और आज आप भी निर्णय लें कि क्या आप किसी वरदान को जबरदस्ती हड़प तो नहीं रहे हैं। मेरे मित्रों, प्रभु आपके निर्णय में आपकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
सबसे जुदा।